नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की
मनोज और मनोरमा यानी रति दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं और वह मनोज का अर्थ कामदेव होता है और उसकी पत्नी रति होती है। दोनों मिलकर के जा रहे हैं और वह पति अपने पत्नी के सामने अपना गौरव अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए कहता जा रहा है कि देखो मेरी कितनी हिम्मत है, कितनी बड़ी शक्ति है मेरे पास और कितना प्रभाव है कि तीन लोग को ही मैंने अपने अंडर में रख रखा है। मेरे सामने कोई भी ऐसा नहीं आ सकता, प्रत्येक व्यक्ति मेरे सामने मेरे याद करते ही नतमस्तक हो जाता है, इतना प्रभाव है। ऐसे पति की तू पत्नी है, ऐसा वह अपना प्रभाव बताता जा रहा है। हाँ नाथ, तुम तो बहुत बड़े हैं, तुम्हारे जैसे तो कहीं भी मिलेंगे नहीं, ऐसे वह भी प्रशंसा करते हुए जा रहे हैं। दोनों टहलते टहलते विमान से बैठे बैठे फिर बाद में वह एक बार पत्नी कहती है कि नाथ ये कौन बेटा है यहाँ पर, बस ये कौन बेटा है यहाँ पर कहते ही वह कामदेव जो है बिल्कुल निष्प्रभ हो गया। तो पूछती है क्यों नाथ, क्या बात हो गई, अभी तक तो तेजी थी, अब कैसे बाजार में मंदी आ गई। 5 मिनट में भाव घटता जाता है क्या? हाँ हाँ प्रिय, क्या बताऊं, हमने बहुत प्रयास किया, सभी प्रकार की नीतियां अपनाई गई, लेकिन यही एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरे अंडर में संभव नहीं है। अंत कृंत को नृणाम जन्म ज्वर सखा सदा त्वामंत काम तकम प्राप्त व्यावृत्त है काम कारथ। यह एक व्यक्ति ऐसा है, पता नहीं ये कैसे इनका जन्म और कैसा इसका प्रभुत्व और कैसा प्रभाव कि किसी भी प्रकार से मेरे प्रभाव में नहीं आया। फिर आखिर ये कौन है? ये वो है जो काम को भी अपने वश में करने वाला है। तीन लोग की वासनाएं पूरी की पूरी मिलकर के भी इसे अपने पाशबद्ध नहीं कर सकती, ऐसी शक्ति इनके पास है। बड़े बड़े पहलवान लोग भी मेरे सामने घुटने टेकते हैं, लेकिन इन्होंने तो बस मुझे एक ही श्वास के माध्यम से फेंक दिया दूर। उनके जीवन में मेरे लिए एक सेकंड समय के लिए भी जगह नहीं है, ऐसा यह प्रभाव है। पूरा जब वह लोह का पिंड तप जाता है या तवा, उसके ऊपर एक बूंद पटक दीजिए, उसको वह फेंक देता। यह शक्ति इनके पास है। तो प्रभु, यदि इस प्रकार की शक्ति इनकी है तो हम तो आपको अब प्रभु नहीं कहेंगे, हम तो इन्हीं के सामने जाकर के नतमस्तक होंगे। होना ही है, तुम भी हो और हम भी हो, होना ही है। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदिशांक नाभिर नीतम मनागप मनोन विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना किम मंदरा दृश्य करम चलितम कदाचित। मानतुंग महाराज ने वृषभनाथ भगवान की स्तुति करते हुए एक श्लोक में उल्लेख किया है, उस भीतरी आत्म तत्व का प्रभाव बताया। हे भगवान, प्रलय को सूचित करने वाला ऐसा एक महान तूफान आ जाए, आ सकता है, छोटे मोटे जो पेड़ पौधे और चट्टान वगैरह हैं और पर्वत वगैरह हैं, वह सब शीर्षासन कर सकते हैं एक मिनट के अंदर। लेकिन सुमेरु जो पर्वतों का राजा है शैलेश के अर्थ दो हैं, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने दो अर्थ किए हैं। यहां तक ये दोनों अर्थ हमारे स्मरण में आ रहे हैं, हम बताना चाहते हैं। एक शैलेश का अर्थ होता है शील का ईश, और एक शैलेश का अर्थ होता है शैल मने पर्वत, और उसका ईश कौन है? नगराज, पर्वतराज, वह है सुमेरु पर्वत। अनंत काल व्यतीत हुआ है, सुमेरु पर्वत को किसी ने भी आज तक हिलाया नहीं, वह हिल नहीं सकता। कोई भी तूफान आ जा तो हिल नहीं सकता। उसी प्रकार तीन लोक की वासनाएं ये भगवान के सामने आ भी जाए तो भी वो सब शांत हो जाती हैं। इसमें क्या विचित्रता है? स्वर्गीय अप्सराएं आकर के नृत्य करना प्रारंभ कर दे। पहले नीलांजना का नृत्य देखने के लिए वृषभ कुमार बैठा था, या यूं कह दो वृषभ जो कि गृहस्थ आश्रम में थे, उस समय की बात है कि वह राग में रंग में रमा हुआ जीवन था, और सभा में बैठ करके सिंहासन के ऊपर बैठ करके नीलांजन का नृत्य और इंद्र दिखा रहा है। अप्सराएं बुलाई गई हैं, एक से एक अमरा अप्सर साम परिषदी चिरम रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे, और अत्रापि यहां भी वहां का भोग उपभोग भोगते हुए काल व्यतीत हो गया, सागरोपम सर्वार सिद्धि में नीचे आ गए, फिर भी अभी वह पुण्य परिपाक छूटा नहीं। यहाँ के जीवन में भी 83 लाख वर्ष तक सब भोगो भोग भोगते रहे, उस समय की बात नहीं है। उस समय तो नीलांजना का दृश्य उन्हें अच्छा सुहाना लग रहा था, इसलिए वो देखने के लिए बैठे थे। किंतु वे जिस समय अप्सराएं पुनः आकर के वृषभनाथ भगवान के सामने आकर के यदि नृत्य करती है, चित्रम किमत्र इति त्रिदिशांकनाभिर नीतम मनागपि मनोन विकार, क्योंकि सुमेरु के समान उनका मन हो गया, पिघलने वाला नहीं है। किसी भी प्रकार की हाव भाव भंगिमा के द्वारा वह भावना में कोई अंतर नहीं आने वाली है। 16 कर भावनाएं नहीं, 12 भावनाओं के चिंतन के साथ जीवन लीन हो गया है अपने आप में, ऐसे ब्रह्मचर्य में लीन वे वृषभनाथ, उनको कोई भी डिगा नहीं सकता। और डिगा भी कैसे सकता है? सुमेरु पर्वत को कोई भी तूफान झंझावात हिला नहीं सकता। इसमें क्या आश्चर्य की बात है? रति ने कामदेव की बात सुनी, तब कामदेव को बिल्कुल नीचा देखना पड़ा। अब कभी भी गाल फुलाते हुए मूछे तानते हुए और ऐसा नहीं कहना कि मेरे सामने और कोई नहीं है, होते रहेंगे। और वह आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त करने वालों की कथा कहां तक कही जा, भीतरी भीतर वे डूबे रहते हैं, बाहर उनकी शक्ति का कोई भी प्रदर्शन नहीं होता है, और उसका कोई भी प्रदर्शन नहीं होने के कारण दुनिया का प्राणी उससे अपरिचित रह जाता है, और वह अनुमान नहीं लगा पाता कि इस व्यक्ति के पास इतना बड़ा व्यक्तित्व रह सकता है। आत्मिक शक्ति का नाम ही एक वस्तुतः शक्ति है, विल पावर जिसको बोलते हैं। बाकी अंध बाहर के हॉर्स पावर होते हैं, नहीं समझे? बाहर के तो हॉर्स पावर होते हैं और भीतर की आत्मा की शक्ति का नाम विल पावर है, चाहे सब कुछ कर सकता है। दो पंक्तियां एक पंक्ति हमने पढ़ी थी इंग्लिश की थी वो, दो पंक्तियां एक पंक्ति हमने पढ़ी थी इंग्लिश की थी वो, यू कैन लिव एज यू लाइक, ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी थी। हम उस प्रकार के जीवन को जी सकते हैं जैसे हम चाहते हैं, राग में, द्वेष में, विषान विषय में यदि जीवन को बनाना चाहें तो जैसे अभी वक्ता जी ने कहा था कि हम लोगों ने तो गृहस्थी बसाई है और किंतु पांच भगवान जो थे, जो कि वासुपुज मल्ली और नेमिनाथ पार्श्वनाथ और महावीर भगवान, उन्होंने कहा गृहस्थी इन्होंने नहीं बसाई। उन्होंने देखा जिन्होंने गृहस्थी बसाई उनका मुखड़ा कैसा होता है, इसलिए उन्होंने नहीं बसाई। सब रोते रोते तो मुखड़ा मुद्राएं आती हैं, महाराज कछु तो उपाय बताओ। कहा बताए हम तो क्या बताए, वहां पर क्यों फंस गए महाराज? गलती हो गई, अब ऐसी गलती हम आगे नहीं करेंगे। हाँ, आप जैसे लोग बहुत आ जाते हैं और गलती के ऊपर गलती करते चले जाते हैं। हाँ महाराज, बनती तो ऐसी गलतियां हैं। वस्तुतः संसारी प्राणी इन विषयों की अपेक्षा से बहुत ही एक प्रकार से दुखित है, पीड़ित है और चिंतित है। इस चिंता से मुक्त होने का कोई भी उपाय नहीं। इसी भाव में इस संसारी प्राणी ने, अर्थात इसी भाव में ये पांच जो यति बाल यति हुए हैं, इन्होंने विषयों को नहीं देखा। किंतु ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है संसार में जो आज तक इन चार संज्ञाओं से मुक्त हो गया हो। सब जीवों का रिकॉर्ड इतिहास पंच पापमय है, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार संज्ञाएं हैं। इन चार संज्ञाओं के द्वारा प्रत्येक संसारी प्राणी का मूल्यांकन होता है, ये किस प्रकार का जीवन जी रहा है। इन चार पंक्तियों के द्वारा, चार लक्षणों के द्वारा अपने आप ज्ञात हो जाता है। खाने के बिना इसको चल नहीं सकता, एक संज्ञा। वासना इसकी कभी भी आज तक मिटी नहीं और संसार दशा में मिटने का कोई सवाल नहीं। कुछ भव ऐसे हैं जहां पर कुछ अपेक्षा से वासना शांत जैसे होते, परे प्रविचारा जैसे सूत्र आया था चतुर्थ अध्याय में, 16 स्वर्ग के ऊपर वाले देव चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि से कोई मतलब नहीं, किंतु प्रविचार से रहित हुआ करते हैं, वासना से रहित हुआ करते हैं। लेकिन पूरी प्रकार से वासना से रहित होते हैं ऐसी बात नहीं है। मतलब ये है इंद्रियों के विषयों से भी रहित नहीं हो सकते। इंद्रियों के विषय से रहित होने का मतलब यह है संसार का तट आगे बिल्कुल सामने आ गया है और वह भव्य होना चाहिए, निकट आसन्न भव्य होना चाहिए, तब यह बात बन सकती है। बंधु एक पर्याय की बात गौण कर दीजिए, सबका इतिहास पांच पापमय ही मिलेगा। कोई भी ऐसा वस्त्र नहीं है जिसके ऊपर कलंक का धब्बा नहीं लगा हुआ हो। चारों प्रकार के संज्ञाएं संसारी प्राणी ने अनंत काल से भोगी है, की है, संवेदन किया है। अब यदि गुरुओं के उपदेश सुनकर, भगवान के चरण सानिध्य प्राप्त कर, जिनवाणी के श्रवण करने से यदि उसके मन में जागृत हो जाए भाव कि आत्मा का स्वभाव विषयातीत है, आत्मा का स्वभाव पापातीत है, पुण्यातीत है, आदि आदि समझ करके यदि वह विश्वास करता है तो आगे के लिए यह संभव है। इसी प्रकार के जीवन के बारे में संकल्पित होना यही एकमात्र उस अंतिम जो आज ब्रह्मचर्य धर्म है उसका विश्वास मान लेना चाहिए। जीवन में कितने प्रकार के वो तान पतन होते हैं, छोटे से जीवन की बात है, सागरोपम आयु में कई प्रकार के उत्थान और पतन आते होंगे, शरीरकृत क्षेत्रकृत नहीं हो किंतु भावकृत भी हमेशा बने रहते हैं। लेशाओं में, उपयोगों में, कषायों में अंतर, ये सब बताते हैं कि आत्मा के भीतर क्या घुटन पैदा है। अनंत काल के वह बार बार होती रहती है। जिस प्रकार सेगड़ी के ऊपर भोगनी रख करके और उसमें पानी अनुपात से रख करके मूंग और दाल और चावल रख दिया गया और ऊपर से तस्तरी बंद कर देगी, फिर आधा एक घंटा हुआ नहीं और खदबद होता चला जाता है। इसी प्रकार भीतर उपयोग में खिचड़ी पकती रहती है, एक समय के लिए भी विश्राम नहीं है। पांच इंद्रिय के विषय, चार संज्ञाएं, भविष्य के संकल्प और अतीत की स्मृतियां उसे हमेशा झकझोर करती रहती हैं और वह बार बार उपयोगवान पुरुष आत्मा इसके बारे में कसरत करता रहता है। बंधुओं, वो खिचड़ी तब जो है स्टॉप हो सकती है जब उसमें पानी पूर्णतः अभाव को प्राप्त हो जाए और पानी डालती ही चली जाए। जैसे छत्तीसगढ़ के लोग क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग मतलब छत्तीसगढ़ के सारे नहीं, जो हमने सुना था आदिवासी जितने भी होते हैं उनका प्रिय भोजन है चावल। और चावल कैसे करते हैं, वो चावल नहीं खाते हैं, सुबह जो है सेगड़ी के ऊपर रख देंगे एक मटकी और उसमें जो है चावल डाल लेंगे और पानी डाल लेंगे, फिर बाद में जब भूख लग गया प्यास लग गई तो उसमें से आकर के एक लोटा पानी पी लिया चावल का और पुनः एक दो लोटा उसमें डाल दिया, चावल नहीं डालेंगे अब। और वह नीचे से अग्नि लगी रहती है। उसी प्रकार आप लोगों का हिसाब किताब है, प्रति समय एक लोटा पी लेते हैं और एक लोटा पुनः उसमें पानी डाल देते हैं और वह पकती जा रही है। जैसे जैसे वह चावल पकेंगे वैसे वैसे उसमें एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होगी, मादकता, तेजी और बलवर्धक। उसी प्रकार आप लोगों का मोह का काम है कि मोह का परिणाम भोग भी रहे हैं और मोह करते भी जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह रील, यह एक क्रम, यह एक चेन छूटती नहीं है। ऐसी चेन है कि वह रट के समान चल रही। बंधुओं, अपने स्वभाव के बारे में आप विचार करिए। 10 दिन हो गए आप लोगों को केवल धर्म के बारे में ही विश्लेषण चल रहा है, धर्मों के नाम भिन्न भिन्न रख करके बताने का प्रयास किया गया है। वस्तुतः धर्म का अर्थ पहले ही शुरुआत के दिन में हमने कहा था, वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव जो है धर्म है, जैसी वस्तु है उसी प्रकार का उसका स्वभाव रहेगा। यदि जीव है तो चेतना या ज्ञान ना देखना उसका स्वभाव है, और यदि अजीव है तो उसको नहीं देखना नहीं जानना यही उसका स्वभाव है। आप लोग देखने और जानने स्वभाव वाले हैं तो 10 दिन में देखने जानने हारा जो आत्म तत्व है उसी का वर्णन हुआ है, उसी का चिंतन हुआ है, उसी की चर्चा हुई है, उसी को समझने का एक प्रयास किया गया है। आप लोगों ने बहुत मनोयोग के साथ सुना और उसके अनुरूप कुछ भीतर प्रभाव भी पड़ा होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वह प्रभाव प्रतिशत में यदि कम होगा तो क्या होगा। बंदे को परिणाम कुछ एक सूत्र आया ही था, यदि प्रभाव आपका ज्यादा रहता है, उस संस्कार का प्रभाव ज्यादा रहता है तो वह भिन्न अपने जो कषायें हैं उन कषायों को समाप्त करने में सक्षम होगा। यदि नहीं है, ऊपर ऊपर यदि हम सुनते चले गए हैं, ऊपर ऊपर ही सब कुछ करते चले गए हैं तो वह नियम से फीका पड़ जाएगा। इसलिए फीका न हो ये मैं चाहता हूं। 10 दिन के उपरांत आप कल तो छुट्टी मिल ही जाएगी, हरी झंडी रखी हुई है यहाँ पर, क्योंकि पीलिया झंडी केसर झंडी तो लगाएंगे ऊपर और निकल जाएंगे आप लोग। लेकिन जहाँ कहीं भी जाओ वहां पर इन बातों के स्मरण लाते चले जाइए कि आखिर यह आना जाना कब तक लगा हुआ है, यह कब तक का है। द्रव्य का स्वभाव ही यह है परिणामशील, लेकिन किसी एक क्षेत्र को लेकर ही क्यों, किसी एक काल को लेकर के ही क्यों, किसी एक वस्तु को लेकर के ही क्यों, किसी एक दिशा को लेकर के ही क्यों, वस्तु का नाम परिणामशील होना चाहिए। लेकिन हम तो वहीं पर जाएंगे, हम तो यहीं पर रहेंगे आदि आदि जो कल्पना आती है, ये संकल्प और ये विकल्प, ये दो चक्की हैं, चक्की के दो पाटे हैं। मैं इस विषय को उस उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा जिसको आप लोग बहुत जल्दी पकड़ सकेंगे। कबीर दास और कबीर के सुपुत्र कौन, कमाल की बात है। हाँ, ये दोनों जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं। घूमते घूमते अपने बेटे को कबीर जी कहते हैं, क्योंकि वो अध्यात्मी तो थे ही, संत माने जाते ही थे, और उन्होंने कहा, बेटा देख लो संसार की दशा के क्या मैं कहूं कथा। देखो इधर जो ये चक्की चल रहा है, इसमें जिस प्रकार धान पिस रहे हैं दो पाटे के बीच में, उसी प्रकार संसार की दशा है बेटा। जैसे पंडित जी ने समझाने के लिए उदाहरण दिया था, बेटा संसार में कुछ नहीं है, इसलिए मेरी भावना हो गई है वन की ओर जाने की, इसलिए राज संभाल जो कुछ भी है करना उस संभाल ले। तो पिताजी के सामने वह कहता है कि पिताजी ये बता दो कि यह आपको क्यों नहीं अच्छा लगता, सार नहीं है बेटा। जब जिस वस्तु में आपको सार नजर नहीं आ रहा है, तो बाप से बेटा जवई होता, पिताजी आप बताओ मेरे लिए कष्ट दे करके आप पहुंचाओ, पहुंचा करके जाओगे क्या, नहीं तो नहीं है। तो जो आप जिस ओर कदम उठाएंगे उसी प्रकार। तो कबीर ने जब कहा, बात सुनी कमाल ने, फिर बाद में कहा, पिताजी आपकी बात जो है जानदार नहीं है, छानदार तो है नहीं समझे, लेकिन जानदार नहीं है। लचीले शब्द सुना करके पिताजी ये बेटा ऐसा समझ करके इधर उधर की बातें मत समझा, हम भी कुछ समझ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ये सब आपकी कृपा है। लेकिन कभी कभी बात ऐसी होती है पिताजी। क्या है पिताजी? आपकी ये बात पक्की नहीं है, कच्ची है। कच्ची है? देखो हमेशा बड़ों को यह छोटों के मुख से कुछ कच्ची बात कहते हो तो पक्की बात कौन सी सुन लो। पिताजी बात ऐसी है, आप जो कह रहे हैं उसमें थोड़े बहुत जो है एकांत का आश्रय लिया गया है। दो पाटों के बीच में जो कोई भी धान आता है वह पिस जाए ऐसा नियम नहीं है पिताजी। ये कैसे? जो चक्की के भीतर पहुंच जाता है फिर बाद में वह दो पाटों के बीच में जाता है तो पिस जाएगा, आटा हो जाएगा। लेकिन समझदार भी धान होते हैं, ध्यान से सुनिए, धान और ध्यान में कितना अंतर है, है? कितना अंतर है? धान तो वो ऐसे ही बोलने में आउट है नहीं समझे कि धान बोलते हैं और ध्यान को भी बुंदेलखंड में धान बोलते हैं, धान नहीं समझे, ये धान की बात है, ध्यान से सुनो। तो धान जो है जो ध्यान रखता है दो पाटों के बीच में जाने से पहले, जो धान ध्यान रखता है कि मुझे उस ओर नहीं जाना है, तो क्या करते हैं? एक बार की बात, बहुत छोटा था उस समय की बात है, चक्की चल रही थी, पीस रहे थे। उस समय बाजार की चक्की नहीं चलते थे, बहुत कम चलते थे। अब देखो, देखा जो पीस रहे हैं उनके पास जाकर देखा, वो बीच बीच में जैसे आप लोग टेलीफोन नंबर लगाते नहीं यूं यूं करके, उस प्रकार बार 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 बीच बीच में हमने कहा ये क्या टेलीफोन लगा रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तर्जनी के माध्यम से यूं यूं करते हैं। तो पूछ पड़ा कि ये क्या करते हैं। कुछ धान समझदार होते हैं या बदमाश होते हैं, वो यहां इसी कील के सहारे से रह जाते हैं, और यदि कील के सहारे से रह जाए तो 10-20 चक्कर भी डाल दिया जाए कुछ नहीं होगा वो। इसलिए हम उसको वहां से हटा करके उस चक्की के मुंह में देते हैं। अच्छा ये है, और मान लीजिए वो चक्की के मुंह में उन धान को देते देते उतनी तर्जनी चली जाए तो हाँ जा सकती है उन धान के वजह से, लेकिन वो धान यदि कील के सहारे को नहीं छोड़ते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक चलाए, शाम से लेकर सुबह तक चलाए, कुछ भी हो ओ, कुछ भी नहीं है, सुरक्षित है। धम्मम शरणम पवज्जाम, उस कील के शरण में जिस प्रकार वो धान चले जाते हैं तो उनकी सुरक्षा हमेशा बनी रहती है। उसी प्रकार संसार जो कि दो पाटों में पिस रहा है, यदि उसमें धर्म रूपी कील की शरण में संसारी प्राणी रूपी धान चला जाता है तो ध्यान रखो कभी भी नहीं पिसेगा। पिताजी बात समझ में आ गई? वाह, तो वाह कह करके क्या कमाल की बात है। आप लोग भी कह देते ना कभी कभी, कोई अच्छी बात होती है, कमाल आपने तो कमाल कर दिया। कमाल का मतलब क्या, वहां से चालू हो गया कबीरदास के पास से कि बेटे को भी उन्होंने उदाहरण के माध्यम से, जिस उदाहरण के माध्यम, इसको बोलते हैं उदाहरणाभास। तो कमाल ने ऐसा कमाल कर दिया कि पिताजी ने जिस उदाहरण को दिया था युक्ति पूर्वक, उसको अच्छे ढंग से समंत भद्र महाराज के जैसे शिष्य हो उस प्रकार उन्होंने दे दिया। पिताजी ने सोचा कि कमाल की बात है। बंधुओं संसार से मत डरिए, मतलब ये जो कर्म के उदय आ रहे हैं इससे मत डरिए, किंतु डरिए उससे जिसको बोलते हैं संवेग। डर आवश्यक है। सम्यक दर्शन के चार लक्षणों में प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्याद्य लक्षणम प्रथमम सराग सम्यक दर्शनम, ऐसा कहा। धवला में भी उल्लेख है, पूज्यपाद स्वामी आदि टीका जो तत्वा सूत्र के हुए हैं उन सब में यह लक्षण घटित होता है। इस प्रशम संवेग, संवेग किससे उत्पन्न होता है? जगत काय स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। करणान योग के अध्ययन करने से अर्थात तिलोपन्नति, त्रिलोक सार, लोक विभाग, सिद्धांत सार संग्रह आदि ग्रंथों के अवलोकन करने से संसारी प्राणी को संवेग की प्राप्ति होती है, और उसके अभाव में विषयों की ओर चली जाने से आवेग की, उद्वेग की उत्पत्ति हुआ करती है। कषाय वही कर सकता है। ऊंट जब तक अपने आप को ही देखता रहता तब तो बहुत बड़ा मानता है, जब पहाड़ के पास चला जाता तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ मेरे से भी कोई ऊंट बड़े हैं, ऊंचे हैं, ऐसी बात नहीं है। उसी प्रकार यह महान विस्तार लोक का जब वह ज्ञानी मुमुक्षु देखता है तो उसके भीतर कपकपी आ जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर लगने लग जाता है कि कहीं मान लीजिए सामने एक बहुत बड़ा खड्डा है, गर्त है, और आप उस चोटी के ऊपर जाकर के यूं देख रहे हैं, नीचे का पाताल देखने में आ जाएगा, तो लेकिन ऐसा हो जाता है कि कहीं ऐसा न हो कि पैर थोड़े बहुत फिसल जाए, नीचे चले जाए। तीन लोक में खड्डा इतना बड़ा है, 84 लाख योनियां हैं, निगोद आदि पाताल में यदि चला गया, वहां से उठने का कोई भी स्पीकर लगाओ, माइक लगाओ, कुछ भी करो, कोई भी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती, कोई करंट नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति आ सकती जीव की। इसलिए जिस प्रकार वह धान नहीं पिसता, उसी प्रकार इस संसार में उस जीव को कोई भी कुछ भी धक्का नहीं लगता जिसने धर्म की शरण ली। और धर्म वह वस्तु स्वभाव धर्मो, अर्थात वस्तु में निष्ठ होना, वस्तु में ही लीन होना, वस्तु के बाहर जाने का प्रयास नहीं करना, जानना और देखना, यही एकमात्र हमारा धर्म है। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे हमारे धर्म नहीं है, ये बिल्कुल लिख के रखिए। जब कभी भी मुक्ति आपको होगी, इस लकीर के ऊपर विश्वास करने से ही होगी। जब जानना देखना ही शेष रह जाएगा अपने जीवन में, तभी मुक्ति संभव है, अन्यथा तीन काल में नहीं। चाहे आज करो, चाहे कल करो, चाहे आज खाओ या परसों खाओ, यही खाना पड़ेगा, इसके बिना जीवन चलने वाला नहीं। जब बहुत दूर जाने के उपरांत लेने की अपेक्षा जब करना ही है, तो 100 माइल का चक्कर लगा करके क्यों आओ। भोजन आप करते हैं तो भोजन करते समय ग्रास कैसे ले जाते हैं आप नीचे से, ऐसे ऐसा तो कहीं किसी ने भी नहीं किया होगा, किसी ने भी नहीं किया होगा ना, ये तो बात आप जानते हैं, सीधी बात है, यूं यूं कर लेना चाहिए महाराज, ज्यादा भी नहीं कर लेने चाहिए, दस्तरी यहीं पर ला करके, हाँ व्यायाम ज्यादा क्यों, सीधा सीधा जल्दी जल्दी नीचे भी ना गिरे, कम भी ना हो, इसलिए ऐसा करना चाहिए। इसी प्रकार आचार्य कहते हैं तत्व ज्ञान जिसको हो जाता है वह विशेष आयाम नहीं करता, अब संकल्प विकल्प छोड़ करके बैठ जाता है। मैं आज ये कहना चाह रहा हूं, वस्तुतः ब्रह्मचर्य धर्म वह है, केवल यह व्यावहारिक माना जाता है कि स्पर्शनेन्द्रिय को विजय करना, स्त्रियां पुरुषों से, पुरुष स्त्रियों से संबंध नहीं रखे, किंतु भिन्न पदार्थों के ऊपर अधिकार चलाने का भाव, और उनको हम अपने अंदर अपनी वस्तु मानने के ये जो विकल्प करते हैं, और ये क्यों करते हैं, उनका उपभोग करने का भाव रहता है, इसलिए वो स्वामी बनना चाहता है, और कर्तृत्व बुद्धि भी उसके साथ लागू हो जाती है। यदि यह नहीं होता, भोगने का और उसके अधिकार के भाव नहीं होते, तो तीन काल में यह बात नहीं बनती। दूसरे पदार्थ के साथ संबंध रखने का मतलब ही यही है कि वह अपने वस्तुनिष्ठ होना नहीं चाहता, अपने आप में वह संतुष्ट नहीं है, अपने आप की वस्तु के ऊपर उसे गौरव नहीं है, इसलिए दूसरे का पाई ही एक प्रकार से बहुत अच्छा लगता है। करोड़पति होते हुए भी दूसरे की एक कोई वस्तु, घटिया भी वस्तु हो तो भी वह बहुत बढ़िया लगती है। कारण यह है, जिसका अभाव रहता वही वस्तु बहुत अच्छी लगती है, और जो प्राप्ति हो जाती है वह अच्छी नहीं लगती। लेकिन सम्यक दृष्टि की बात क्या, कुछ भी चीज नहीं प्राप्त हुई है, फिर भी वह कहता है मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है, मुझे अन्य किसी पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। न स्वर्गीय सुख की चाह है, न दुनियादारी के दुख से कोई डर है, क्योंकि कोई परवाह नहीं। वस्तु स्थिति जिसको समझ में आ जाती है, वह व्यक्ति हमेशा निडर निर्भीक रहता है, निशंक रहता है, वह भोगों की सामग्री सामने पड़ी हुई रहती है, फिर भी वह उसके प्रति अपने तरफ से कोई भी प्रयास नहीं करता। वह ज्ञानी का जीवन हम लोगों के लिए पूज्य माना जाएगा। जो अपने आप में स्वस्थ रहते हैं, समाधि में लीन, अर्थात अपने आत्मा में जो लीन रहता है, वही ब्रह्मचारी माना जाता है। आचार्य समंतपद्र स्वामी ने युक्तन शासन एक नाम का ग्रंथ लिखा है, न्यायपरक है, किंतु उसमें कार्य का बहुत बढ़िया लगती है मुझे। हमने कई बार इसके रेफरेंस दे करके विषय को समझने का और समझाने का प्रयास किया, वह यह है, दया दम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतांज साधन। अदृश्य मन रेखले प्रवादे जिनत्वदीयम मतमद्वितीय। हे जिनेन्द्र भगवान, आपका मत अद्वितीय इसलिए है कि ऐसी व्यवस्था है जिसे प्राप्त करना है उसका निर्धारण करके निर्णय करके वहां तक पहुंचाने का आपका जो शासन है, आपकी जो पद्धति है वह अनूठी है, अन्यत्र वह नहीं पाई जाती है। दया सर्वप्रथम अपना लिया जाता। दया का अर्थ ये हुआ कि सर्वप्रथम प्राणियों के ऊपर दया करना और अपने आप के जीवन के ऊपर भी दया करना, अर्थात पंच महाव्रतों को अंगीकार करना, यह दया है। दम का अर्थ होता है इंद्रियों के विषयों की ओर जो इंद्रियां जा रही उनको रोक लगाना, अर्थात उन इच्छाओं के ऊपर भी दमन करना, अंकुश लगाना। तो दया में निष्ठा होगी तो वह दम को भी प्राप्त कर सकेगा। दमस्य निमित्तं दया, इंद्रियों के ऊपर विजय किए प्राप्त किए बिना वह दया सफलीभूत नहीं होती। और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल या विजय प्राप्त करने से क्या होता है? त्यागस्य निष्ठा, त्यागस्य निमित्त दमः। त्याग का निमित्त क्या है? दम है। त्याग क्या है? विषयों का, कषायों का और भीतर जो चंचलता है उसका त्याग होता है, इसका नाम त्याग है। त्याग होने के उपरांत फिर समाधि आ जाती है। समाधि का अर्थ क्या है? जिसके जीवन में व्याधि नहीं है, व्याधि की कोई चिंता नहीं, व्याधि उसको बोलते हैं जो शरीर कृत वेदना व्याधि है। फिर आदि किसको बोलते हैं? मानसिक विकार, मानसिक दुख का नाम आदि है। फिर इसके उपरांत उपाधि, उपाधि किसको बोलते हैं? हैं? अभी जो बोली हो रही थी नियर अबाउट नहीं समझे? हाँ, बौद्धिक आयाम जो कि नाम के लिए हुआ करता है वह उपाधि में आता है। वो बहुत, उसकी सीमा बहुत दूर तक चलती है। फिर बाद में आ जाता है समाधि का नंबर। आदि व्याधि उपाधि से रहित फिर बाद में आ जाते हैं समाधि। समाधि का अर्थ सम, बिल्कुल शांत हो जाता है। आपके यहां लौकिक में भी एक नाम आता है, क्या आता है? समधि। क्यों भैया? जिससे आप परिचित रहते हो उसी से आप हंस जाते हैं। इसका मतलब यह कि समझ में आ गया। समधि किसको बोलते हैं? समानाधि यस्य वर्तते इति समधि। नहीं समझे? संतुष्ट हो जाता है। ये तो इनके समधि है। समधि साफ, समधि साफ, समधि साफ। कौन से समधि साफ भैया? ये तो कहने की बात है। समाधि जिसे प्राप्त हो उसी की धीज है समधि होती है। ये होना आवश्यक है। और समधि का भाव ही समाधि बन जाएगा। बना नहीं बनता तो बना लेना, क्योंकि समता की यह परिणति है। तभी वह अपने आप में लीन हो सकता है जब वह उसी नाप और तोल का होता है। कभी कभी कोई सामान खरीद करके ले आते हैं और कोई डिब्बे में उसको बंद कर देते हैं, फिर उसके ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। अब ढक्कन लगाने के उपरांत कोई टाइट ढक्कन हो तो क्या होता है? कभी कभी भीतर पूरी, भीतर की पूरी भीतर ही रह जाती है, वह ढक्कन ही नहीं निकले। मान लीजिए कोई ढक्कन ढीली हो जाए तो पूरी भी बाहर आ जाए और सब भी बाहर आ जाए। उसी प्रकार जब तक यह उपयोग न ढीला रहता है और न चुस्त रहता है, समान माप और तुल का होता है तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाता है। गर्मी के दिन में जो पाटे आप लोग बनाते हैं तो सिकुड़ करके क्या हो जाते हैं, उसके बीच में छिद्र रह जाता है। लेकिन जब अरद्रा नक्षत्र आ जाए, एकाध वर्षा हो जाए, फिर बाद में कैसे वो सब भूकंप की पूर्ति हो जाती है, आकर के मिल जाते हैं। ऐसा क्यों होता? ये संकोच विस्तार तब तक चलता रहता है जब तक वह स्वस्थ नहीं रहता। हमारी यही दशा है कि कहां जाते हैं, जहां जाते हैं उसी में लीन हो जाते हैं, अपने आत्मा में लीन नहीं। और आत्मा में लीन होने का मतलब यही है कि बाहर के संबंध बिल्कुल टूट जाएंगे। जिस समय कोई किसी को मान लीजिए हार्ट अटैक हो गई और उसकी इतनी कमजोरी आ गई, उसको कह दिया गया भैया इसको पूर्ण रेस्ट दे दो, वहां पर इसे सुलाओ बिठाओ, जहां पर आना जाना कोई भी न रहे, बोलने का कोई सवाल नहीं, समय पर जाकर के उसे दे दो और सब कुछ ठीक हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा वो। भीतर जब जैसे जैसे वह अकेला रह जाता है शांत हो जाता है, यदि थोड़ी बहुत भी कमी रह जाती है तो अपना उसे वह वेदना सताने लग जाती है। रेस्ट इज एसेंशियल आफ्टर देन हार्ड वर्क। जब मन वचन काय की चेष्टा का परिश्रम ज्यादा हो जाता है, कठिन परिश्रम हो जाता है, तो विश्राम अनिवार्य हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य भी वही वस्तु है जो अनंत काल के परिश्रम को दूर करने वाली है और अनंत काल तक उस आत्मा को, उस पुरुष को शांति प्रदान करने वाली, अपने आप में स्वस्थ हो जाता। आपे में रहना यह ब्रह्मचर्य है। मतलब क्या? मतलब यह है, मान लीजिए पिताजी से कुछ बात करनी है और वह पिताजी बैठे हैं, वह लड़का चला जाता है, कुछ पैसा चाहिए उसे, और पिताजी जो हैं किसी कार्य के वशीभूत वो ऐसे हैं कि बिल्कुल तपे हुए हैं। जब उनके मुख को देख लेता है लड़का, भैया कौन आया है वहां पर, कौन आया, जवाब नहीं दे करके वो भाग जाता है और पूछता है, किसी ने पूछा है, क्यों भैया ले आओ ना, हमारा वश का नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है, पिताजी नहीं है क्या, पिताजी तो बैठे हैं वहां पर, लेकिन पिताजी आज आपे के बाहर हैं। मतलब क्या, समुद्घात का प्रयास चल रहा है, कषाय समुद्घात में है, और ये समय हम उनको लिए थोड़े भी छेड़ेंगे तो फिर वो जो है आपे में नहीं है। जिस समय में आपे में रहते हैं उस समय में चाबी का गुच्छा भी दे सकते हैं और जो आप चाहो ले लो। आत्मा की ये भी यही स्थिति है, आत्मा आपे में नहीं है, इसलिए वह अन्यत्र विचरण कर रहा है। व्यभिचार शब्द का सही अर्थ क्या है? अपने सीमा का उल्लंघन करके बाहर की ओर जाना। लौकिक पद्धति के अनुसार तो अलग होता है, लेकिन अपने आप को छोड़ करके बाहर जाना। एक स्थान पर लिखा है कुशील किसको कहते हैं, तो लौकिक पद्धति के अनुसार कुशील तो वह है कि अन्य स्त्री और पुरुषों के साथ संबंध रखना, यह कुशील है। लेकिन आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कुशील की परिभाषा ये लौकिक है। वस्तुतः परिभाषा वह है अपने शील से रहित होना, अपने स्वभाव को छोड़ना ही कुशील है। कम मसुहम कुशीलम सुहकम मम चाविजान सुशीलम कि हितम हो दि सुशीलम जम संसारम
पवे से दे।
कौन सा सुशील है? पुण्य सुशील है। कौन सा कुशील है? पाप कुशील है। ऐसा कहने वाला उसके लिए मैं पूछना चाहता हूँ, कहते हो जो संसार में अटकाता है उसे तुम सुशील कहते हो? गलत बात है। सुशील तो वह है बंधन से पार करा दे, और जो बंधन से पार को पाप पहुंच चुका है वही सुशील है। बाकी संसारी प्राणी जितने भी हैं वे कुशील हैं, अर्थात अपने शील से दूर हैं। अपनी थोड़ी भी लाइन इधर आ जाएगी तो वह सहन नहीं हो सकता। तलवार म्यान में पहुंचती है आपके डालने से, लेकिन ये ध्यान रखना म्यान यदि टेढ़ी हो, ऊपर का भले भाग टेढ़ा हो सकता है लेकिन भीतर जो रास्ता जाने का है वह सीधा होना चाहिए। जैसे तलवार का रुख होए उसके अनुरूप म्यान भी होना चाहिए और वह सीधे म्यान चली जा सकती है। किंतु ये कहावत आती है ना, एक म्यान में, हाँ मतलब क्या है ये? मतलब ये है एक म्यान में एक तलवार के लिए जगह है, जाने के लिए जगह है, दो तलवार नहीं जा सकती। जाने का प्रयास भी करा दो तो भी वह फेल हो जाए। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव स्वस्थ होना ही है। उसमें आप सुशील और कुशील कह करके और कुछ भी ला करके रखोगे तो नहीं है। तमाद कुशील रायम मा कुनः माव संसगम साधी नो ही विनाशो कुशील संसग राय न। इसीलिए कुंदकुंदाचार्य कहते हैं, हे भव्य जीव यदि सुख चाहता है, हे मुमुक्षु, हे निकट भव, हे समझदार, डॉल समझ सुन चेत, डॉल समझ सुन चेत, वाह भैया वाह कितने टाइटल लगाए, डॉल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत खोवे। कैसे कह रहे? इसी प्रकार कुंदकुंदाचार्य कहते हैं, हे सयाना, हे समझदार, हे भव, हे मुमुक्षु, थोड़ा समझ ले कि ये स्वभाव से यदि चुत होना चाहते हैं, स्वभाव को यदि विकृत बनाना चाहते हो तो इसकी शरण में चले जा। लेकिन स्वभाव को यदि सुरक्षित रखना चाहता है, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे यह हो चाहे वह हो, कोई भी नहीं, अपने से जो पृथक है उसके प्रति संसर्गम मा करो, संसर्ग मत करो, उसके प्रति राग मत करना। यह अंतर मुहूर्त की यदि हमारी सीमा हो जाती है तो क्या बताएं। बहुत दिन की बात है, एक हिंदी में छंद लिखा था, वह आपके सामने है। क्या हो गया समझ में मुझको न आता, क्यों बार बार मन बाहर दौड़ जाता, स्वाध्याय ध्यान करके मन रोध पाता, पे श्वान सा मन सदा मल शोध लाता। मन को कितना समझा, कितने बार समझा, मन कुत्ते की पूंछ के समान, जिसके लिए 1 किलो 2 किलो 3 किलो सरसों के तेल की मालिश की जाए और अच्छे पहलवान के माध्यम से मालिश की जाए तो भी वह कुत्ते की पूंछ अपना परिचय दिए बिना नहीं रह सकता है। वह जब तक करोगे सीधे तब तक तो यूं हो जाए, फिर बाद में छोड़ दोगे तो यूं, नियम है उसका। मन को स्वाध्याय के माध्यम से और प्रतिक्रमण के माध्यम से, गुरुओं के भीतर के माध्यम से हम सीधा करने का प्रयास करते हैं, फिर भी वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता।
कुत्ते को आप कितने भी अच्छे अच्छे मिष्ठान पकवान खिलाइए तो भी वह इधर उधर सूंघने का स्वभाव नहीं छोड़ता। कुछ ऐसे कुत्ते जो होशियार होते हैं, लेकिन गधे के बात में कहूं उसके लिए सडरस पकवान रख दिया जाए तो उसको सूंघ लेगा कि तो खाएगा नहीं, लेकिन खा भी लेगा तो उसी पत्र को आप जाकरी गटर के जो है कोने में डाल दो तो उसको भी वह सूंघ करके बहुत अच्छे ढंग से खा लेगा। मन को अच्छी चीज भी दिखा दो और बुरी चीजों के लिए उसकी आदत है ही, छोड़ता नहीं। इसको अंडर में कैसा रखा जाए? अंडर में रखने से पहले उसका स्वभाव क्या है ये समझ लीजिए। वस्तुतः मन का कोई स्वभाव नहीं है, मन की कोई आदत नहीं है, हम उसे नहीं समझ रहे हैं इसलिए यह बहुत टेढ़ी खीर हो चुकी। वस्तुतः मन को कंट्रोल करना बहुत आसान है, ठंडे दिमाग के साथ सोचने की बात है। हम या तो उसको बिल्कुल कंट्रोल्ड करना चाहते हैं, तनाव बढ़ जाते, या तो हम बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। एक समय की बात है, संगीत का प्रोग्राम हो रहा था और सारे के सारे लोग आकर के बैठे हैं और संगीत का आनंद लेना है और उसको क्या बोलते हैं, सितार, हाँ सितार या कुछ भी, बुलबुल को कुछ भी कह दो, जम्बो क्या बोलते हैं। आप देख लीजिए, जब रंग आ रहा था संगीत का, उस समय उसके तार ढीले हो गए। अब थोड़े से ढीले होते ही संगीत का मजा बिगड़ गया और तालियां बजने लगे, प्रशंसा के लिए नहीं। आप जानते ही हैं प्रसंग को लेकर के ताली कैसी बज सकते हैं। तो बस तालियां बजने प्रारंभ हो गई तो उन्होंने कहा, आधे मिनट आप ठहरिए, अब बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उन्होंने जो ढीला हुआ था तार उसको उन्होंने कस दिया, बस ऐसा कस दिया कि थोड़े बजाना जाता है तो आकस्मिक मीना का तार टन। अब पुनः वो तार बांधने के लिए आधा घंटा तो कम से कम चाहिए। अब क्या करें, गड़बड़ हो गया तो तार को ढीला छोड़ दोगे तो भी संगीत का आनंद नहीं आ सकता, और तार में अच्छे संगीत का स्वर निकल रहा है इसलिए थोड़ा और कस दो। ये ध्यान रखना, एक लड्डू खाओगे तो मजा आएगा, आनंद आएगा, एक लड्डू खाने से जितना आनंद आया है दो लड्डू खाएंगे उसने उससे दुगना आएगा, क्योंकि स्केल है, त्रैराशिक है। एक लड्डू में इतनी तृप्ति तो दस लड्डू में कितनी तृप्ति, दस गुनी होनी चाहिए। गणित शास्त्र है, गणित शास्त्र तो ठीक है लेकिन सिद्धांत शास्त्र नहीं है, ये वहां उल्टा चलता है। तो सीमा में होना अनिवार्य है, इसी को बोलते हैं मध्यस्थ। वह तार मध्यम हो, न कसी हुई और न ही ढीली, तब संगीत का स्वर वहां से जैसे चाहे वैसा निकल सकता है। उसी प्रकार मन कोई वस्तु नहीं है, मन कोई वस्तु नहीं है, केवल हमारे ज्ञान की एक परिणति है। हम चाहते हैं तो मन विषयों की ओर जाता है और हम नहीं चाहते उसको विश्वस्त करा देते हैं, देख इसमें सुख नहीं है, शांत बैठ जाता। आपके सामने मान लीजिए पंचेंद्र विशेष सामग्री बिखरी हुई है, बहुत अच्छी लग रही है, अथवा मान लीजिए रसनेन्द्र की सामग्री है और वह रसना देखते ही पानी आना चाहिए, लेकिन रसना में पानी तब तक नहीं आता जब तक भीतर से हुक्म नहीं हो। कभी भी रसना के अंदर रस नहीं आ सकता जब तक भीतर से कोई ऑर्डर नहीं आया हो। वह जो का त्यों रहे रखी रहेगी थाली, किंतु मन यदि अर्थात हमारे मन में यह विकल्प अर्थात हम ये चाहेंगे तब मन के लिए आरोप आ जाता है, वस्तुतः आत्मा का ज्ञान ही ऐसा विश्वस्त हो चुका है कि मुझे इन सामग्री के माध्यम से सुख मिलता है, ये धारणा बनी हुई है। इस धारणा के वजह से वह ऑर्डर दे देता है तो हाथ उठता है वहां की ओर, जिस जो ऑर्डर है उसी की ओर चला जाता है। भीतर से यदि राग नहीं है तो मन भी नहीं जाएगा और हाथ भी उस ओर नहीं जाएगा। अर्थ यह है, प्रशिक्षण भीतर से चल रहा है ज्ञान के माध्यम से, तो मन के लिए इंद्रियों के लिए शिक्षण मिलता है वरना नहीं मिलता। एक ब्रह्मचारी की कथा सुना करके मैं आपको जागृत कराना चाहता हूँ, समय आपका हो रहा है। एक आश्रम में बहुत सारे ब्रह्मचारी और अपने गुरु के पास बरसों से अध्ययन कर रहे थे। साधना भी चल रही थी उनकी, कुछ विशेष उन्हें और चीज देना पसंद करता है गुरु, किंतु परीक्षा लेना अनिवार्य है। कई बच्चों के लिए कई प्रकार की साधना बता दी गई। उन्होंने साधना में सारे ही सारे बच्चे फेल हो गए, गुरु का विश्वास दह गया, अब कोई भी बचा नहीं मेरे पास शिष्य। एक शिष्य है, अब उसकी परीक्षा करनी है, बाकी जितने भी हैं ये कोई भी इसमें फेल हो गए, ये इसके योग्य नहीं है, इनके लिए और समय अपेक्षित है। अब वह जो शिष्य था उसे बुलाया गया, वह अंतिम शिष्य था उसे बुलाया गया। हाँ देख, ये सारे सारे फेल हो चुके हैं, इनके लिए साधना बता दी गई थी, अब तुम्हें भी साधना देना है और परीक्षा ठीक है जैसी आप इच्छा। उसकी जीभ को बाहर निकालने के लिए कहा, जैसे आप जब कभी भी खून की कमी वगैरह हो जाए तो डॉक्टर साहब जीभ दिखा दो तो आप दिखा देते, उसी प्रकार उसने अपने भीतर से जीभ को बाहर निकाला। फिर इसके उपरांत उस जीभ के ऊपर, उस जीभ के, वह समय कौन सा था, खाने का समय था, भोजन का समय था, और उस जीभ के ऊपर एक चम्मच चीनी रखी गई। चीनी कौन सी आपको मालूम है, चीनी का अर्थ मतलब बूरा शक्कर, वो रखे गए। अब वो रखे गए 5 मिनट की परीक्षा का काल है, परीक्षा काल में 5 मिनट तक का। अब इसको भीतर ले ले, भीतर ले लिया, 5 मिनट बैठ जा, 5 मिनट बैठ गया। हाँ अब जीभ दिखा दे, जीभ दिखाया, एक एक शक्कर के कण जैसे सूखे रखे गए थे वैसे ही मिल गए। ये बात सुनकर के आपके मुंह में पानी आ गया होगा और जिसके मुंह में शक्कर है उसको पानी नहीं आया, वो कौन सा प्राणी होगा। बड़ी बड़ी पोथी पढ़ने वाले भी इसमें हार जाएंगे। उसके लिए यही कहा था, तो अपने जीवन में यदि साधुत्व का अनुभव करना चाहता है तो तेरे लिए जितेंद्र बनना आवश्यक है, और जितेंद्र के कोष के बारे में सारे सारे विद्यार्थियों ने शिष्यों ने तो सब कुछ कर डाले, अपने तरफ से कोष का निर्माण भी हो गया होगा, एक खंड में भी हो सकता, दो खंड में भी हो सकता, 3 खंड में भी हो सकता, शब्दकोश के कोश बनते चले गए। आज भारतवर्ष में जितनी भाषाएं हैं एक एक भाषा के 500-500 कोश की संख्या मिलती है। अभी नेमी चंद जी आए थे, उन्होंने कहा था हम संपादन वगैरह करते हैं तो उससे पहले कम से कम थोड़े देखभाल करते हैं, हमारे पास ज्यादा तो नहीं 300 कोशों की संख्या है। 300 कोष उनके पास है। हमने कहा हे भगवान, 300 कोष के वजन यदि निकाल दिया जाए तो कितने होगा? एकाध मन हो सकता है। संसार यह विज्ञान शब्दों में उलझ गया, शब्दों में उलझ गया। विषय के अभाव में, सब्जेक्ट के अभाव में कोषों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन जिसको विषय अवगत है उसके लिए भाषा की कोई आवश्यकता नहीं। वही शब्द निकलेगा उसी अर्थ को बताने वाला। महाराज श्री ने एक बार बात कही थी, देखो साहित्य का अवलोकन करने से ही अपने आप कोष का निर्माण होता है। कोष लेकर के दाएं कोष रखो और बाएं जो है किताब रखो, और एक एक शब्द के लिए बार बार कोष को टटोलते जाओगे तो दिमाग फेल हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि संस्कृत में पढ़ रहे हैं और वहां हिंदी में यदि कोष देख रहे हैं तो उसमें और गड़बड़ी होगी, माथा नियम से दर्द करेगा, टेंशन बढ़ेगी। तो भाषा में उलझ गया युग, परिभाषा में उलझ गए हम लोग, लेकिन वस्तुतः भीतर का जो तत्व है उस तत्व को कैसा पकड़ा जाता? साधन के माध्यम से पकड़ा जाता। अर्थ को हम साधना के माध्यम से पकड़ सकते हैं, साहित्य के माध्यम से नहीं। और साहित्य की सही परिभाषा पूछना चाहो तो हमारी साहित्य की परिभाषा एक अलग ही है भैया। वो शब्द ही कह रहा है, वह शब्द अभिव्यंजन कर रहा है। क्या कर रहा है? देखो साहित्य हित से युक्त संयुक्त जो होता है उसका नाम है सहित। हित से जो युक्त संयुक्त होता है उसका नाम है सहित, और सहित का जो भाव होता है वह साहित्य है। मतलब ये हुआ जिसके अवलोकन करने से, आलोडन करने से हित का संपादन जो कर सकता है वह साहित्य है, अन्यथा तो वह सुख से राहित है, सुख से 100 कोस दूर है। इस प्रकार के साहित्य सृजन आज यदि हो भी रहा कोई मायना नहीं रखता, लेकिन जीवन में जो साधना के माध्यम से जिसने पाया वह साधना ब्रह्मचर्य जितेंद्रिय, ऐसे ही इंद्रिय के ऊपर उसने कंट्रोल किया था उस विद्यार्थी ने, शिष्य ने, गुरु ने जब परीक्षा की उस समय शक्कर का एक दाना भी पिघला नहीं, पानी पानी नहीं हुआ, क्या वह जीव थी क्या अजीव थी? अजीब बात है ये, नहीं समझे आप लोग? वह जीव है क्या अजीब है? यह अजीब बात है। एक भी कण वहां पर पिघला नहीं, पानी पानी नहीं हुआ, इसको बोलते हैं साधना। उसके लिए अब किसी भी प्रकार के वस्तुओं से, जो बाधक वस्तु उनसे बचने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन बंधुओं मैं ये पूछना चाहता हूं, उसने जीवन में किस प्रकार की साधना की होगी? इतना निकट विषय है और ये जीव ये रसना, रस मिलने के उपरांत सोती रहे। हाँ, यदि भीतर ज्ञान है और वह ज्ञान की इच्छा है तो नियम से यह रसना अपना काम करना प्रारंभ करेगी। यदि वह भीतर ज्ञान होते हुए भी उस ज्ञान में इच्छा नहीं है, अपरिग्रहो अनिच्छो भणिदो नानी निच्छदे असनम, अपरिग्रहो दु अनिच्छो, अपरिग्रहो अनिच्छो, परिग्रह रहित है, इच्छा से रहित है, इसलिए ज्ञानी अपरिग्रही माना गया है। भोजन करते हुए भी वह भोजन खादन अपिन खादते, पिबन अपिन पिबते, क्या कर रहा? खाता है फिर भी नहीं खाता है, पीता है फिर भी नहीं पीता है, जाता है फिर भी नहीं जाता है, देखता है फिर भी नहीं देखता है, जानता है फिर भी नहीं जानता है। ऐसा क्यों? मन से नहीं, केवल तन से, मन से नहीं केवल तन से, इच्छा से नहीं, निरीक्षा पूर्वक आप लोग कब कैसे करते हैं आप बता दीजिए। जिस समय हमारा मन अन्यत्र लगा हुआ हो और भोजन के लिए आए और किसी भी प्रकार से कुछ डालना है और लक्ष्य उसी पेपर की ओर है और माँ ने पुरस दी और खा लिया और माँ ने भूल किया क्योंकि नमक नहीं डाला, नहीं डाला, नहीं सही, नहीं डाला, लेकिन नमक के स्थान पर बुरा और डाल दिया और आप खाते चले गए और बात ऐसी होगी जहाँ पर बुरा बुरा डालना था वहां पर पूरा का पूरा नमक डाला था उसको भी आपने खा लिया कि बेटा क्यों भोजन पेट भर गया। हाँ बहुत अच्छी बात है लेकिन थोड़े बहुत रह गया था, या मान लो उनके दिमाग में बात आ गई अरे तो बुरे के स्थान पर तो हमने नमक डाल दिया और नमक के स्थान पर बुरा डाल दिया, कैसा खाया होगा। सब चलता है, नहीं समझे, सब चलता है, जब भीतर कुछ और चलता हो तो बाहर सब कुछ चलता है लेकिन भीतर चलना चाहिए, इसी का नाम साधना है, मन की एकाग्रता है, स्वभाव निष्ठा है। बंधुओं उस उदाहरण को हमने पढ़ करके ऐसा लगाया कि हाँ ये साधना है, हम अपने मन को, हम अपने चित्त को, हम अपने उपयोग धारा को एक बार स्व की ओर ले जाते हैं तो पंच इंद्रिय विषय फीके फीके रह जाते हैं। दो मिनट आपका शेष रह गया उसकी परीक्षा तो पूरी की पूरी शत प्रतिशत नंबर आ गए, और कोई भी हो जाता तो उसमें एक को से गए 101 नंबर दे देते, 101 नंबर देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, क्यों मेरा काम हो गया। सारे सारे बच्चों ने कहा कि महाराज हमारी क्या गलती हो गई, आपकी क्या गलती हो गई, आपकी गलतियां तो कितनी हो गई, गलतियां गलतियां ही हैं, इसलिए आपकी दाल गलती नहीं, नहीं समझे, हाँ इसलिए आपकी अब दाल गलेगी नहीं, मालूम पड़ गया कि कितना क्या है। आप लोग कह रहे हैं पता पड़ गया कितना पानी है, कितना गहरा है पानी। साधना की बात है बंधुओं, छोटी छोटी बात को लेकर के भी हम अपने जीवन में साधना कर सकते हैं। इस साधना के उदाहरण आप ये रखिए, बिल्कुल ऐसा हो सकता है इंद्रियों में इस प्रकार निरीहता आ सकती है, इंद्रियां अपने कार्य नहीं करेंगे तब तक जब तक कि ऑर्डर भीतर से नहीं आए। जिस प्रकार बॉर्डर पर ऑर्डर के बिना गोलियां नहीं चलती, उसी प्रकार भीतर आत्मा के ऑर्डर के बिना इंद्रियां रूपी गोलियां विषयों को नहीं चुन सकती, नहीं चुन सकती, नहीं चुन सकती, इसी का नाम है ब्रह्मचर्य। ऐसे उत्तम ब्रह्मचर्य के लिए हमारा बार बार नमस्कार है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ हे भगवान हमारे ये 10 लक्षण धर्म अच्छे ढंग से संपन्न हो। अभी नहीं संपन्न हुए, ध्यान रखना है, ये तो व्याख्यान के पीछे से संपन्न हुए हैं। 10 लक्षण धर्म जिस समय संपन्न होंगे तो उस समय हम शैलेश बनेंगे, अर्थात मेरु के समान निश्चल होंगे अथवा लोक के अग्रभाग पर जाकर विराजमान होंगे अनंत काल के लिए, फिर किसी भी प्रकार से हमारे अंदर विकृतियां पैदा नहीं होंगी। महावीर